पांचवा, कंबुज देश में भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 9वीं सदी में राजा जयवर्मा द्वितीय के समय से कंबुज देश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। इस समय में यह देश उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता गया और 11वीं सदी में वह एक शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ। कंबुज देश के इतिहास के इस उत्कर्ष युग का वृतांत लिखने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि इससे पहले के कंबुज पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का परिचय दे दिया जाए। हुनान के अब तक केवल 3 अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, पर कंबुज देश के 8वीं सदी तक के जो अभिलेख मिले हैं उनकी संख्या 50 से भी अधिक है। चीनी विवरणों के अतिरिक्त इन अभिलेखों से भी प्राचीन कंबोडिया की संस्कृति के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। शासन व्यवस्था। भारतीय उपनिवेशकों द्वारा कंबुज देश में जो उपनिवेश या राज्य स्थापित किए गए थे उनकी शासन व्यवस्था भारत के राज्यों के सदृश थी और उनमें उन्हीं आदर्शों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता था जिनका प्रतिपादन भारत के राज शास्त्र प्रणेताओं ने किया था। अंग चुम्बनिक के अभिलेख में राजा भव वर्मा के 2 मंत्रियों का उल्लेख है, जिनके अन्य गुणों के साथ यह भी कहा गया है कि वे धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। श्लोक इस प्रकार है, तस्य तो मंत्री ना वास्तां सम्मतो कृतवेदिनौ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञो धर्मार्थविव रूपिणौ। संभवतः यहाँ अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र अभिप्रेत है, जिसका अनुसरण कंबुज देश में भी किया जाता था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि भव वर्मा के एक राज पदाधिकारी अमात्य ने शिवलिंग की स्थापना के संबंध में जो अभिलेख उत्कीर्ण कराया था उससे में यह कहा गया है कि वह अमात्य राजा का अत्यंत अंतरंग तव मास्त था, क्योंकि वह सर्वोपधा शुद्ध था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में विविध उपाधाओं द्वारा राज कर्मचारियों के शौचाशौच शुचि और अशुचि की परख करने का विशद रूप से प्रतिपादन कर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति सब परखों में खरे उतरे, जो सर्वोपधा शुद्ध हो, उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। कंबुज के इस अभिलेख में मंत्री को सर्वोपधा शुद्ध कहा जाना यह सूचित करता है कि वहां कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रभाव विद्यमान था। राज्य के शासन में राजा की स्थिति अत्यंत महत्व की थी और वही राज्य का कर्ता धर्ता होता था, पर संभवतः उसमें परामर्श देने के लिए राजसभा भी होती थी। 565 ईस्वी के तुओल प्रहथत स्तंभ लेख में राजा जयवर्मा के राजसभाधिपति द्वारा केदारेश्वर शिव की लिंग की स्थापना का उल्लेख है। राजसभाधिपति नामक राज पदाधिकारी की सत्ता तभी संभव थी जबकि राज्य में कोई राजसभा भी हो, पर इस राजसभा के सदस्य कौन थे और इसके क्या कार्य थे इस विषय में कोई सूचना अभिलेखों से नहीं मिलती। कंबुज के अभिलेखों में राज्य के अनेक पदाधिकारियों व राज कर्मचारियों का भी उल्लेख है। इनमें मंत्री, दूत, राजदूत, द्वाराध्यक्ष, दवारिक, नृपांत, रंगयौध, अंगरक्षक, सेना का अध्यक्ष या अंतर्विषयक, राजभिषक, राजवैद्य, महाशौपति, अश्वसेना का अध्यक्ष, महानौवाहक, जल सेना का अध्यक्ष और सामंतोनौवाह जल सेना का अन्य पदाधिकारी विशेष महत्व के हैं। सैनिक अधिकारियों के अनेक वर्ग थे। जयवर्मा के एक अभिलेख में सहस्त्र वर्गाधिपति संज्ञाक एक सैनिक अधिकारी का उल्लेख है जो मुगल युग के हजारी और 5000 का स्मरण दिलाता है। घोड़ों के अतिरिक्त हाथियों का भी कंबुज के सेना में उपयोग था। इस युग के अभिलेखों में अनेक बार जंगी हाथियों का उल्लेख किया गया है। 7वीं सदी के एक चीनी ग्रंथ के अनुसार कंबुज में 5000 जंगी हाथी थे। ईशान वर्मा सदृश राजाओं के शासनकाल में कंबुज राज अच्छा विस्तृत हो गया था, अतः शासन के लिए उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था जिनमें से प्रत्येक का शासन एक नगर में हुआ करता था। चीनी विवरणों में इन नगरों की संख्या 30 बताई गई है। अभिलेखों में भी ऐसे कुछ नगरों का उल्लेख है, तत्नंदरपुर, ताम्रपुर, आध्यपुर, श्रेष्ठपुर, भवपुर, ध्रुवपुर, ध्वनिपुर, ज्येष्ठपुर, विक्रमपुर, उग्रपुर और ईशानपुर। अभिलेखों में इनके कुछ शासकों के नाम भी दिए गए हैं। राजा जयवर्मा ने अपने राजवैद्य सिंह दत्त को आढ़यपुर का अधिपति शासक नियुक्त किया था। नगरों की रचना दुर्गों के रूप में की जाती थी और उनके चारों ओर प्राकार तथा परिखा रहती थी। प्रजा के हित कल्याण के संपादन के लिए नगरों में विप्रशाला, सरस्वती संभवतः सरस्वती मंदिर, शिक्षणालय या पुस्तकालय, सत्र चिकित्सालय या धर्मशाला, सरोवर और भक्तशाला, भोजन वितरण एवं भीख देने के लिए शाला आदि की व्यवस्था की जाती थी। राजा ईशान वर्मा की राजधानी तथा राज दरबार के संबंध में चीनी ग्रंथों का एक विवरण महत्व का है। वहां लिखा है कि चित्रसेन के देहावसान के पश्चात उसका पुत्र ईशान वर्मा राजा बना। वह ईशानपुर में रहा करता था। इस नगर में 20,000 मकान थे। नगर के मध्य में एक विशाल राजप्रसाद था जहां राजा अपना दरबार लगाया करता था। वह सप्तरत्न मंडित पंचवेद्य गंध सुगंधित आसन पर आसीन होता है। गज दंत तथा सुवर्ण पुष्पों द्वारा सुसज्जित बहुमूल्य दारू स्तंभों पर तना चंदवा उसके ऊपर होता है। राज सिंहासन के दोनों ओर एक एक आदमी धूप जलाने की धूपदानी के लिए खड़ा रहता है। राजा गोटेदार श्वेत रंग का रेशम पहनता है। बहुमूल्य मणियों और मोतियों से अलंकृत मुकुट धारण करता है और उसके कानों में सुवर्ण कुंडल होते हैं। उसके जूते विभिन्न रंगों के चमड़े से बनाए जाते हैं और उन पर हाथी दांत का काम किया होता है। राज्य के उच्च पदाधिकारी 5 वर्गों के हैं जिनकी पोशाक राजा के सदृश होती है। वे राज सिंहासन के सम्मुख झुककर 3 बार भूमि का स्पर्श करते हैं, तब राजा उन्हें ऊपर आने की अनुमति देता है। सीढ़ियों से ऊपर आकर वे हाथ जोड़कर राजा के सामने दंडवत करते हैं। इसके बाद वे आसन ग्रहण कर लेते हैं और राजा के साथ राजकीय विषयों पर विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। विचार विमर्श के अनंतर वे फिर झुककर प्रणाम तथा दंडवत करते हैं और बाहर चले जाते हैं। इस चीनी विवरण से कंबुज के राज दरबार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। धार्मिक दशा। 8वीं सदी तक के जो अभिलेख कंबुज में उपलब्ध हुए हैं उनमें प्रायः किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा या दान पुण्य का ही उल्लेख है। इस कारण उन द्वारा कंबुज की धार्मिक दशा के विषय में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इन अभिलेखों का प्रारंभ प्रायः किसी देवता की वंदना के साथ किया जाता है, जैसे नमोस्तु परमा थार्य त्रैलोक के मूर्तये या तम वंदे हरिम, जिससे उस युग के देवी देवताओं का अच्छा परिचय मिल जाता है। 8वीं सदी तक कंबुज देश में पौराणिक हिंदू धर्म का प्रधान था और वहां शिव विष्णु आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। राजा ईशान वर्मा के एक अभिलेख 549 ईस्वी में यज्ञिक कर्मकांड का भी उल्लेख है, पर पूजा के लिए प्रधानतया देवी देवताओं की मूर्तियां ही प्रतिष्ठापित की जाया करती थी। कंबुज का प्रधान देवता शिव था। उसकी सशरीर मूर्तियां भी स्थापित की जाती थीं और लिंग रूप से भी रुद्र, आम्रात, केश्वर, यमोश्वर, गंभीरेश्वर, निकामेश्वर, पिंगलेश्वर, ईशान, नैमिषेश्वर, श्री विजयेश्वर, केदारेश्वर, गिरीश, शंभु, त्र्यंबक, त्रिशूली, सिद्धेश, शंकर, त्रिभुवनेश्वर, नितवेश्वर, अचलेश्वर, कंदवेश्वर, महेश्वर, उत्पन्नेश्वर आदि कितने ही नामों से शिव का उल्लेख कंबुज के प्राचीन अभिलेखों में किया गया है। उसकी जो सशरीर मानव शरीर के रूप में मूर्तियां कंबुज में मिली हैं उनमें उसके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा का अंकन किया गया है, पर शिव की पूजा के लिए प्रधानतया लिंग का निर्माण किया जाता था। शिव के साथ में उनके वाहन नंदी की मूर्ति भी बनाई जाती थी। विष्णु की पूजा भी कंबुज में प्रचलित थी और अभिलेखों में इस देवता का उल्लेख हरि, अच्युत, नारायण और त्रैलोक सार आदि नामों से किया गया है। उमा, दुर्गा देवी, चतुर्भुजा, भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की पूजा भी कंबुज देश में प्रचलित थी और शिव तथा विष्णु की हरिहर, शंकर, नारायण, शंभु, विष्णु, हरिशंकर, हर, अच्युत, शिव विष्णु सदृश संकीर्त रूप से पूजा का भी वहां प्रचार था। भारत के पौराणिक धर्म में जिन देवी देवताओं की पूजा का विधान था प्रायः उन सब की मूर्तियां कंबुज में बनाई गईं और उन्हें मंदिरों में प्रतिष्ठापित किया गया। जहां तक धर्म का संबंध है कंबुज देश की दशा ठीक वही थी जो भारत की थी। यद्यपि कंबुज देश का प्रधान धर्म पौराणिक हिंदू धर्म था पर बौद्ध धर्म का भी वहां प्रवेश प्रारंभ हो गया था। इस काल के एक अभिलेख में 3 बोधिसत्वों का भी उल्लेख है, पर बौद्ध धर्म अभी वहां जड़ नहीं पकड़ पाया था। कंबुज देश के पुराने भग्नावशेषों में सैकड़ों हजारों मूर्तियां और उनके खंड विद्यमान हैं, जो वहां पौराणिक हिंदू धर्म के व्यापक प्रचार के स्पष्ट प्रमाण हैं। जिस प्रकार भारत में राजा राजकुल के व्यक्ति तथा सभ्रांत लोग मंदिरों के निर्माण तथा उनके व्यय चलाने के लिए दान पुण्य किया करते थे, वैसे ही कंबुज में भी होता था। वहां के बहुसंख्यक अभिलेखों में उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा देव मूर्तियां प्रतिष्ठापित किए जाने तथा उनके लिए किए गए दान पुण्य का ही उल्लेख है। हिंदू धर्म के प्रचार के कारण कंबुज देश में वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन आदि प्राचीन भारतीय साहित्य का भी भली भांति अध्ययन अध्यापन होता था। एक अभिलेख में राजा भव वर्मा की बहन के पति ब्राह्मण सोम शर्मा द्वारा त्रिभुवनेश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठा के उल्लेख के अनंतर यह कहा गया है कि उस सोम शर्मा ने प्रति अखंड पाठ के लिए रामायण, महाभारत और पुराण दान में दी थी। छठी सदी के एक अभिलेख में व्यास द्वारा विरचित संभव के दान किए जाने का उल्लेख है। संभव से महाभारत के आदि पर्व का संभव पर्व अभिप्रेत है। राजा भव वर्मा के एक अन्य अभिलेख में पाशुपत संप्रदाय के आचार्य कवि विद्या पुण्य को न्याय, वैशेषिक और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत कहा गया है। जिस अभिलेख में ब्राह्मण सोम शर्मा द्वारा प्रतिष्ठापित त्रिभुवनेश्वर की मूर्ति का उल्लेख है, उसमें उसे सोम वेदवेद का स्थापना का वर्णन है। उसका प्रारंभ ओम जैमिनये स्वाहा के साथ किया गया है, जिससे जैमिनी कृत पूर्व मीमांसा से कंबुजवासियों की परिचित का संकेत मिलता है। कंबुज देश में अनेक आश्रम भी स्थापित हैं। जिस प्रकार बौद्ध विहारों में स्थविरों और भिक्षु निवास करते थे, वैसे ही सन्यासी और साधु महात्मा आश्रमों में रहा करते थे। राजा ईशान वर्मा के समय के एक अभिलेख में आर्य विद्यादेव द्वारा एक आश्रम की स्थापना का उल्लेख है। इन आश्रमों में किसी प्राणी की हिंसा करना, छत्र छतरी धारण करना, चंवर प्रयुक्त करना, कुत्ते और मुर्गी आदि पालन सर्वथा निषिद्ध था और वहां के निवासियों को नियम संयम के साथ जीवन बिताना होता था। कंबुज के प्राचीन अभिलेखों में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द आए हैं, वैश्य और शूद्र का उनमें उल्लेख नहीं मिलता। यह संभवतः वहां की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण था। जो उपनिवेशक भारत से जाकर वहां बसे थे, वे प्रायः क्षत्रिय वर्ण के थे। धर्म के प्रचार के लिए और लोगों से धर्म कृत संपादित कराने के लिए ब्राह्मण भी वहां गए होंगे, यह सुनिश्चित है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विवाह संबंध हो सकता था, जैसा कि राजा भव वर्मा की बहन का ब्राह्मण सोम शर्मा के साथ विवाह होने से स्पष्ट है। इस विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम हिरण्य वर्मा था। इससे यह सूचित होता है कि संतान माता का वर्ण प्राप्त करती थी, पिता का नहीं। कंबुज के प्राचीन अभिलेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। उनमें काव्य की वही छटा दिखाई देती है जो गुप्तवंशी सम्राटों की प्रशस्तियों में है। उन्हें पढ़कर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इनकी रचना एक ऐसे देश में की गई थी जो भारत से हजारों मील की दूरी पर है। वस्तुतः भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से कंबुज देश भारत का एक ही भाग था और उसका सांस्कृतिक वातावरण पूर्णतया भारतीय था। 9वीं सदी के भारत के संस्कृति के अभिलेख कंबुज देश में अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। उनके आधार पर एक पृथक अध्याय में भी कंबोडिया की भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि 10वीं सदी में उस देश का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ था।